نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير مكان سے گھر تک from house to home. یہ آج کا ہمارا لیکچر قرآن کا مطلوب سیریز جو پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے. آج انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ گھر بنانا مشکل ہے یا گھر بسانا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں گھر یعنی جس کو آپ گھر کہتے ہیں، کیا یہ آپ کا اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے یا کون سا ہے، یہ ایک بڑا ہی معروف کوسچن ہے. بلکہ بعض لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی کا حاصل یہ ہے کہ گھر بنا لیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ویسے گھر بنایا اپنا فرام اسکریچ؟ اور اسپیشلی اگر کسی نے ساتھ رہ کر بنایا ہو کتنا مشکل ہوتا ہے. رینوویشنز اور وہ مٹی توڑ جو ہمارے منہ میں گلوں میں جاتا ہے کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بالآخر بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ گھر جو نیا ہوتا ہے اس کو سجانا آسان ہے، بہت مشکل ہے. پھر جس گھر میں آپ آ گئے ہیں کیا اس کو مینٹین رکھنا یہ آسان ہے؟ سب کچھ مشکل ہے. آج ٹیب لیک کر گئی تو کل کچھ لیک کر گیا تو کل کچھ لیک کر گیا. لیکن آج ہم اس سے بھی مشکل چیز دیکھیں گے کہ یہ مٹی، چونے، ٹائلیں، پتھر، شینگلیئرز، ان سے جو بنتا ہے یہ ہاؤس ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں گھر بنانے کی نہیں، گھر بسانے کی. حقیقت یہ کہ مٹی، چونے، پتھر، اینٹوں سے بنا ہوا گھر بنانا بھی مشکل ہے، اور خاص طور پہ آج کل مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر چیز مہنگی ہو گئی. اینٹ کی قیمت بھی 2-3 گنا بڑھ گئی، سیمنٹ اور مہنگا ہو گیا. ایون ابھی ہم نے لاسٹ 2 منتھس اگو فلڈ ریلیف کی مد میں جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں، تو ایک پروجیکٹ اپنے جوہر آباد انسٹیٹیوٹ کے تھرو کیا تھا جس کے اندر گھر بناؤ، تو علاقوں میں جا کر بالکل انٹیریئر کے جہاں سیلاب آیا تو گھر بنوائے گئے. ایک ایک کمرے کا گھر، یقین کریں، چھوٹا سا ایک کچن اور یہ اس طرح، اور وہ بھی شاید 4-4 لاکھ روپے کا بنا، اور اسٹل ابھی یہ پروجیکٹ آن گوئنگ ہے. لیکن حقیقت یہ کہ یہ سب کچھ بھی آسان ہے. جو چیز مشکل ہے اس گھر کے اندر کے مکینوں کا، اس گھر میں رہنے والوں کا پیار محبت کے ساتھ رہنا اور اس کو حقیقت میں ہوم سویٹ ہوم بنانا، آج میرا یہ ٹاپک ہے. حقیقت یہ کہ وقت کے ساتھ گھر بڑے ہو گئے لیکن وہاں رہنے والے تھوڑے ہو گئے، اور ہم نے ٹالر بلڈنگز بنا لی بٹ شارٹ ٹیمپرز ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں وہ انسیت اور محبت اللہ ہی دکھائے تو دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نسلیں جس کلچر میں پروان چڑھ رہی ہے وہ میٹیریلسٹک کلچر ہے. ہم نے اپنے بچوں کو مادہ پرست بنا دیا. ہم ان کو کھلونوں سے خوش کرتے ہیں، قیمتی کپڑوں سے خوش کرتے ہیں، برانڈڈ چیزیں ان کے دماغوں میں ایسے آ چکی ہیں کہ کوئی بغیر برانڈ کے چیز دے بھی دے تو وہ اس کو ایسے پکڑیں گے کہ ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ذرا کوئی آپ کو برانڈ سے کم کی چیز دے دے تو کہتے ہیں اس نے شاید ہماری عزت ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پہنتا، کیا دیکھتا اور کیا کرتا ہوں. تو بالکل ایسے وقت میں جب ہماری پرورش کی اینٹیں کچی ہو گئیں اور مادہ پرست ہو گئیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج گھر تو بہت ہے. اب آپ میرے اس جملے کو سن کر بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ مکان اور گھر، ہاؤس اینڈ ہوم، یہ کیا ہے. تو آئیے ذرا سا قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ لے کے چلتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو مزید سمجھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نحل کی آیت 18 میں فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنا دیا. چلیے پہلا سوال خود سے کیجئے اور پھر میں آپ کو دعا بھی دوں، کیا آپ کے گھر میں سکون ہے؟ کیا میں پرسکون ہوں؟ سوچئے، پوچھئے خود سے، کیونکہ جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے. بڑی شستہ اردو بولنے والے جانتے ہیں، بلکہ شاعری میں اور پوئٹری اور اسی طرح بڑی شستہ اردو میں گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں. سنتے ہیں مسکن؟ مسکن کیا ہوتا ہے؟ سکنہ سے. سکنہ کا لفظ سنا ہے؟ سکونت پذیر. مسکن سکون کی جگہ. حقیقت ہے کہ باہر کی دنیا میں اتنے فتنے ہیں کہ ایک انسان دن رات مختلف فتنوں سے گزر کر پھر گھر پہنچتا ہے. جان کا خطرہ، ایمان کا خطرہ، مال کا خطرہ، صحت کا خطرہ، سب کچھ ہے. لیکن اگر کسی کو گھر آ کر بھی سکون نہ ملے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آج تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یا مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. میری نظر میں وہ بھائی बेटा कह लें, शौहर कह लें, बाप कह लें, वो मर्द है जो सारे दिन का थका हारा मेहनत मजदूरी करता हुआ। ठीक है, हमारे मर्द अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के नहीं होंगे कि उनको ईंटें उठानी पड़े, सीमेंट और चूना अपनी कमरों पर ढोना पड़े। और अगर कोई वो भी है, आप में से किसी के हस्बैंड मजदूरी भी करते हैं, कोई ठेकेदार हैं, कोई सड़कों का उनका काम है बनाने का, तो वो फिजिकल भी करते होंगे मेहनत, रेड़ी लगाने वाला। सुबह उठकर वो नान छोलों की रेड़ी लगाता है, फजर से पहले का उठा होगा तो फिर ही जाकर नाश्ता बेचेगा ना। इसी तरह कोई रिक्शा चलाता होगा आपके में से किसी का हस्बैंड, और किसी के हस्बैंड किसी ऑफिस में जॉब करते होंगे। हर मर्द मैंने देखा है कि सबसे कम वक्त गुजारता है घर में, जिनके पैसे से ये घर बनता है, जिनकी वजह से ये रंगो रौनक और ये चमक दमक है, उनको ही उस चीज को कम से कम इंजॉय करने का मौका मिलता है। लेकिन इसके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद भी अक्सर भाइयों को अपने घरों में आकर वो सुकून नहीं मिलता। एक बात आप परेशान हो रहे होंगे, ये मर्दों की बात कर रही हैं, इसलिए कि औरत घर की मालिका, औरत प्रिंसेस, औरत क्वीन, क्वीन ऑफ द होम, राइट। मर्द कमाई का अगर मुकल्लफ है तो औरत घर को, यानी मैं कह सकती हूँ इस वक्त मैं भी एक औरत हूँ और आप भी हैं, कि हम सब की जिम्मेदारी है, लिखिए एक जुमला, हाउस मर्द बिल्ड करवाएगा अपने रिस्के हलाल से। 10 मरले का घर बना दे आपको अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी हैसियत है तो वो एक कनाल का बना दे, और अगर अल्लाह ने भाइयों को दिया है तो वो दो दो चार चार कनाल के भी घर बना दें, ये मर्द बना देंगे। लेकिन उस हाउस को होम बनाना आपका और मेरा काम है। और इसकी दलील है वमिन आयाति ही, सूरत रूम में अल्लाह ने एक तकरार से वमिन आयाति ही, मिन आयाति ही में आगे जाकर जो औरत की तरफ बात करके क्या कहा, लितस्कुनू इलैहा, औरत सुकून बख्शने वाली मशीन है। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ भी ले लीजिए, मर्द की मेहनत और बहुत मशक्कत से की हुई कमाई से बना हुआ घर, औरत के सलीके, वफाशुआरी, उसका अपने शौहर से प्यार करना, और जिसको शौहर से होगा उसको बच्चों से भी होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि जिसको बच्चों से है उसको शौहर से भी हो, पक्की बात है। हमारे जो प्यारे होते हैं ना, उनके प्यारे भी हमें प्यारे लगते हैं। आप अपने भाई बहनों के बच्चों को देखिए, क्या वो कोई गुलफाम शहजादे हैं, वो कोई रोमियो जूलियट जैसा हुसन है, या कोई वो मिस वर्ल्ड वाली है, पर क्यों प्यारे लगते हैं? वो नाकें बहती हुई, फीने फीने, छोटे छोटे आपके पीछे फिरते हैं, क्योंकि आप उनकी फुफो हैं, ऐसी है ना, आप उनकी खाला हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमें अपने प्यारों से प्यार होता है, और जिनसे हमारे प्यारे प्यार करें वो भी हमें प्यारा लगता है। औरत को अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत बड़ा काम दिया है। तो ये जो बात है ना, वल्लाहु जाला लकुम मिम बुयूतिकुम सकना, पहली बात, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को जाय सुकून बनाया है। सारे जमाने की कह लीजिए कि धूल और धूप सहकर जब बंदा घर के दरवाजे में दाखिल हो तो उसको सुकून मिले। और मैं पर्सनली जो एक अटैचमेंट महसूस करती हूँ ना, पुरसकून घर क्या होता है, चले शौहर के नाते से कह दीजिए, बाप के नाते से कह दें, कि जिसका घर से जाते ही घर वापस आने को दिल करे, एक वन लाइनर आंसर है। जिस घर की बीवी ने घर को ऐसा बना दिया कि उसका शौहर सुबह जाना ही नहीं चाह रहा, लेकिन वो तो भेज नहीं है, और जाते ही वो रास्ता देखना शुरू होता है, वापस कब आऊंगा मैं अपनी प्यारी बीवी और इस प्यारे से घर में, वो घर पुरसकून घर है। इसी तरह बाप, दरअसल के पहले शुरू में मियाँ बीवी होते हैं, और सच्ची बात है हमारे कल्चर में जब मियाँ बीवी होते हैं तो विलन बहुत सारे होते हैं। मोस्टली शादी के शुरू में ज्वाइंट फैमिली होती है ना, बड़े लाड और चाव से माँ जो है वो बेटे के लिए बहू लाती है, बहनें भाई के लिए भावज लाती हैं, है ना। रिश्ते होते हैं प्यार के होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। शादी का 1 हफ्ता 10 दिन, ये जोड़ा भी बनाया, ये मैं लिबर्टी से लाई थी, ये मैं कराची से बनवाया है, ये जेवर मैंने उस ज्वेलर से लिए। लड़कियां भी कहती हैं कि माशाल्लाह सारे ख्वाब पूरे हुए, ड्रीम्स कम ट्रू। लेकिन उसके बाद जब 10-15 दिन 8 दिन बाहर के फेरे टोरे, हनीमून से उन्हीं खत्म हो गया, मुकलावे आ गए, सब आ गए, फिर वो कहते हैं नाउ यू आर इन पेविलियन, अब फिर वो नजर शुरू होती है दूसरी। और इन दिनों में बेचारी बहू अगर हाथ लगाने लगे किचन में आकर किसी बर्तन को, ना 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 काम नहीं करना, और मैंने तुमसे काम नहीं कराना अभी, वो भी कहती है लो ये तो नूरो नला नूर है, सोने पे सुहागा, ऐसी सास चीजें भी, कपड़े भी इन्होंने बड़े अच्छे ले दिए और काम भी नहीं कराती। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो किचन में आना छोड़ देती है। फिर वो बेचारी अगर किसी वक्त बर्तन लगाना चाहें किचन टेबल पे तो माँ कहती बिल्कुल नहीं, हाथ ना लगाना। अब उस वक्त तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने एक अच्छी सास होने का सर्टिफिकेट लेना है, लिख के रख लीजिए, नहीं मिलेगा। आप जो काम दुनिया के लिए करेंगे ना कि लोग क्या है, इसने जैसी बहू रखी है कोई नहीं औरत की, या मैं ऐसी बहू हूं मेरे जैसी बहू मिलनी नहीं, नहीं मिलेगा। फाड़ के भेज दीजिए, सफा फाड़ दें। जब आप मखलूक के लिए या उनकी नजरों में बड़ा बनने के लिए करेंगे, और मैं माजरत से कहूंगी कि 100% ना भी सही, कोई 40-50% दिल में होता है कि लोग कहें कि देखा, इसको कहते हैं सास। और फिर जाके दोस्तों में कह के तो कह सके ना कि मैं नहीं अपनी बहू से काम कराती, मैं तो ऐसी सास हूं, मैंने तो ये किया। यानी चले 100 नहीं 10% कहीं ना कहीं एक कीड़ा होता है अंदर, वो एक कीड़ा ही हमें फिर मरवा देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची यूज टू हो जाती है कि वो काम नहीं करेगी। अब आपके अंदर वो आम फितरी जज्बे, बिल्कुल फितरी है ये, क्यों नहीं करे बहू काम भाई, घर वाले काम नहीं करते। आपने उसको फीलिंग क्या दी, मेहमान, यू आर माई गेस्ट। शुरू में चीफ गेस्ट थी, आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट हो गई, और जब उसको गेस्ट होने का यकीन आ गया ना, जरे की एक उम्र होती है। देखिए मैं इस चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ कि एक बंदा बैठा है और बाकी काम कर रहे हैं। हमने शुरू से देखा है, कुछ सासे मेरे भी दिमाग में हैं हमारी फैमिली की खवातीन में से, अल्लाह उनको बख्श, सारी चली गई दुनिया से इस वक्त, लेकिन बड़े आराम से प्यार से बैठी होती थी और बहुएं काम कर रही, और बहुएं भी अम्मी थी अम्मी थी अम्मी थी करती थी। और वो फिर बैठ के कहती थी, ये मेरी फुला ने बनाया है, ये चखो ये करेले बड़ी के हाथ के हैं, ये रोटियां ये ऐसी। वो कहेंगी नहीं अम्मी थी, आपने मुझे सिखाया। यानी बातों ही बातों में, प्यार मोहब्बत में सासें बहुओं को ट्रेन कर लेती थी, और बाद में कहना जरा ये पाँव दबा दो। रात सोने से पहले बहुएं पाँव दबा के सोती थी। मैं आज सास बहू पे ज्यादा बात नहीं करने वाली, लेकिन ये एक आपको याद दिखानियां करा रही हूँ। आप कभी भी उस दौर को सामने रखिए। बाहर वाले हो सकता है कहते हो, हाय इनकी बहुएं बड़ा काम करती हैं, हाय गर्मी में 20-20 रोटियां बनाती हैं, हाय पसीनों में, हाय प्रेग्नेंट है फिर भी काम कर रही है। हम सब ने ऐसी सास देखी है, हमारी मोमानियां ऐसी होंगी, हमारी चचियां ऐसी होंगी, किसी ने अपनी फूफियों खलाओं को देखा होगा ना। लेकिन अब फील कर दिख के देखिए कि वो घर असल में जो प्रेजेंटेशन देते थे वो हाउस की नहीं होम की देते थे, नेचुरल था। अब्बा जी की मिसाल ले लीजिए, अब्बा जी गल्ले के पास बैठे हैं, जिसको आज के दौर में आप अकाउंट रजिस्टर बोलते हैं। अब्बा जी मजे से बैठे नोट गिन गिन के रख रहे हैं और बाकी सारे काम बेटे कर रहे होते थे, दैट इज नेचुरल। जिस घर में उम्र के तकाजों के साथ हर एक को लेके चले ना, वो घर हाउस नहीं होम होता है। आज क्या हुआ, पहली मिसाल में ले लें, आप कहते हैं कि मुझे तो करवाना ही नहीं है काम, फिर वो कहती मुझे करना ही नहीं है। एक तरफ बूढ़ी सास एड़ियां रगड़ते या घुटने टेकते या कमर पे हाथ रखकर उठकर किचन में जाकर चूल्हा खोलने से लेकर सबके नाश्ता करके जाने से दोपहर का खाना बनाने तक किचन में रहे। चलिए मासियां भी होती हैं घरों में, हेल्पर्स भी हैं, और जवान बेटियां और बहुएं किधर हैं, कभी भी सुकून नहीं होगा। मैं इस वक्त बड़ी मुतमईन बैठी हूँ क्योंकि मैंने राइट शूज को राइट फुट में और लेफ्ट को लेफ्ट में पहना हुआ है। अभी आप भी मेरी तरह है ना, जरा सा इसी जूती का पाऊं बदल दीजिए, उतार के करे कोई आप में से, जरा लेफ्ट को राइट में पहने और राइट को लेफ्ट में, और मैं कहूँ यहां से वो गेट जरा आप मेन डोर तक तो जाइए, तो इतना ही बहुत है। और क्या उल्टा कहूं कि पंजे की जगह हील और हील की जगह उल्टे पाऊं पहने, गिर जाएंगे। ये कमीज आगे का दामन पीछे और पीछे का आगे गलती से पहन ले तो यहां से गला फंसने लगता है, फितरत का असूल है। देखिए मिसालें तो बीसियों दे दूं, सर्दी है बाहर नॉर्वे में इस वक्त, अगर आप चेक कर दूं तो मैं अभी दिखा देती हूं कि मेरा हाल माइनस कुछ चल रहा होगा, अच्छा खासा माइनस होगा। बाहर शदीद सर्दी होती है, जब आप अंदर आते हैं तो लोगों ने उसको बड़ा अच्छा सेट किया होता है, जितने पे मर्जी कर लें। अब होता क्या है कि जब आप रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो बड़े ईजी होते हैं। अभी गाड़ी में थे तो जो थे साथ, तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप हीटर बंद कर दें, मुझे तो गर्मी लग रही है। क्यों ना हम बहुत गर्मी में खुश रहते हैं ना बहुत सर्दी में, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल। कहते खुला मौसम, ये जुमला लिख लें, घर का खुला मौसम ये घर को हाउस की बजाय होम बनाता है। जहां घुटन हो या तो बहुत सख्ती हो एक तरफ, जो कि पिछले दौर में कुछ घरों में देखी जाती थी। हमारी नानियां दादियां जब अपने दौर की कहानियां सुनाती थी तो वो कहती थी कि हमारी सास बड़ी शक्की थी, बड़ी वहमी थी, घड़े का पानी भी हिलता देखती थी तो कहती थी तू ऐसे तवीस पाए, और करवाना काम बहू से और कह देना जी ये बेटी ने बनाया। ऐसी भी कुछ थी, हर जगह होती, कोई बात नहीं, अल्लाह उनको भी माफ कर देना, समझी थी, गुजर गए तो गुले गए, इल्ला मा कद सलफ। लेकिन आप नोट करेंगे वक्त के साथ साथ इस वक्त जो हमारी जिंदगियां गुजर रही है ना, आज के दौर में हम हर एक उसकी उम्र के मुताबिक नहीं रख रहे। बूढ़ा बाप, यहां तो मैंने बापों को भी नहीं सच्ची देखा, बाहर देखते हैं हम, बूढ़ा बाप घास काट लेगा, जवान बेटा अंदर सोया होता, बूढ़ा बाप गाड़ी निकाल के धो लेगा, धुला लेगा। बूढ़ा बाप सुबह 7-8 बजे उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, जवान बच्चा नहीं जाता। और पंजाबी में कहते हैं कि हम कुछ सक नहीं सकते, हम अपने उन बच्चों के सामने कुछ पर नहीं मार सकते, क्योंकि उनका कद हमसे माशाल्लाह कोई 1-2 फुट ऊपर हो गया। और अगर वो कमाने लग जाए, उनकी कमाई हम खाने लग जाए, तो फिर तो अल्लाह की बना। जिंदगी का एक हुसन याद रखिए, और वो क्या है कि जितना ज्यादा आपके घर में हारमनी और रिश्तों का तकद्दुस और मादियत से कमी होगी, मेटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं, एक चटनी का प्याला और एक एक माँ की रोटी। हमारे वाले सुनाते थे, घर में एक वो हांडी पकती थी, और वो हांडी वो नहीं थी जो आज की हांडी है। माशाल्लाह आज भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने चले कल क्या क्या खाया, तो पहले तो मैं आपसे कहूंगी मुझसे ना पूछिएगा, वैसे कल का पूछ लें, क्योंकि कल मैं कहीं गई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कहीं जाते हैं, लोगों का बस नहीं चलता कि वो क्या करते हैं। गोया कि हम अफ्रीका के किसी कहतज़दा इलाके से आए हैं जिन्होंने कभी नहीं खाया। ये प्यार है उनका, मोहब्बत है, और ख़ास तौर पे पंजाबियों की मोहब्बत, अल्लाह बचाए। और सारा प्यार का इजहार हमारा होता है खिला के। लेकिन आप फील करके देखेंगे कि आज हमारे घरों में एक दिन में, कल के दिन को आप सब अपना बाद में सोचिएगा, आप सुबह नाश्ते से रात तक आपने क्या क्या बनाया, या घर के हर फर्द ने क्या क्या खाया। और वो वक्त था कि दोपहर, यानी बच्चे स्कूल से आते थे तो माँ ने हांडी बनाई होती थी, और उसमें सब्जी, और सब्जी भी कैसे बनती होती है, मुझे जहन में, मेरे अभी भी हमारे घर में बैक पे सर्वेंट क्वार्टर्स थे, तो गांव से एक फैमिली आके रहती थी, तो हम छोटे थे तो घूमते फिरते। मेरे आज भी जहन में सब्जी का तसव्वुर क्या है, वो का नाम था सम्मी, मेरी बहन को भी याद होगा, सम्मी थी, गांव से कपल आया हुआ था, तो वो पहले लकड़ियों का चूल्हा जलाती थी, फिर एक सिल्वर सी पतीली काली सी से चूल्हे पे रखना, थोड़ा सा देसी घी डालती थी, फिर चम्मच से मिर्चें, थोड़ी नमक हल्दी जो भी बेचारों के पास होता है, और टींडे है, आलू है, जो सब्जी काटी डायरेक्ट उसमें डाल दी, और बीच में मिल गया तो एक प्याज डाल के उसको दम लगा देती थी। उनके पास ना गोश्त, ना भूना भानी का सामान, ना शान मसाले, ना लजीजा का कोई वेजिटेबल फलाना फलाना, और वो सब्जी कभी चखनी तो आज भी उसका टेस्ट आता है। और एंड पे मैं अभी इस पे आ गई हूँ कि ऐसे ही खाना बनाना चाहिए, इनसे पूछ लें। सुबह मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो बनाया वो उंगलियों चाट के खा के गए, और हालांकि उससे 2 दिन पहले किसी के घर से अपनों में से आया हुआ था, बहुत अच्छा मजे का था, कि उन्होंने बस चखा, क्योंकि उनको आदत हो गई है प्लेन खाने की। मुझे कहते प्लेन खाना बनाओ, हम जितना फैशनेबल खाना बनाते हैं उतना उनको खाना मुश्किल लगता है। तो फिर वापस आ जाते हैं कि कहते हैं कि कभी तो सब्जी भी नहीं मिलती थी, तो चटनी कूटनी और दही नहीं लस्सी, गुर्बत थी। मेरे दादा दादी का एक ऐसा दौर अब्बू ने जो देखा, हमें बताते थे कि गुर्बत थी, सब बह गया माल, जो भी कोई चमड़े का शे काम करते थे, दादा पाकिस्तान में एक सैलाब आया और वो बह गया, सारी खालें पानी लग गया, गल गई, चली गई, उसके बाद गुर्बत शुरू हो गई। सिर्फ लस्सी हमसायों से आती थी, तो उसमें मिर्चें कूट के नमक तो रख के माँ ने रखी होती थी, और हम ऐसे खाते थे कि आज आपके बच्चे किसका नाम लो के बाहर के फूड खाते हो। लेकिन घरों में सुकून था, रिश्तेदारियों को देख लीजिए, मोहब्बतों को देख लीजिए, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहती आज नहीं है, कोई ये भी नहीं कि हर घर में हर रोज मुर्ग मुसल्लम ही बनते हैं। और अगर आप बड़ी समझदार खातून हैं और आपने एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त, एक दिन कुछ भी नहीं, और एक दिन सिर्फ पिछले दिनों का किया हुआ, तो आपके बच्चे ज्यादा अल्लाह की रहमत से कदरदानी के साथ खाते होंगे। मसला उधर है जिधर एक ही घर में एक वक्त में हर बच्चे का मेन्यू फर्क है। आज हमारे बच्चे शेयरिंग में नहीं रह गए। नुकसान क्या होता है कि हर वक्त आपको फिक्र लगी रहती है, किचन किचन किचन। मुझे बताइए कि आप घर में 6 अफराद हैं मैक्सिमम, सोच लेते हैं हम 2-3 बच्चे हैं घर में, एक आधा बुजुर्ग होता है, आप और आपके हस्बैंड हैं, 2-3 नौकर भी होंगे, 10 लोग लगा लीजिए। अगर आप सारा वक्त किचन में लगा देंगी, तो आपकी नमाजें और आपका पढ़ना पढ़ाना, और फिर उससे बढ़कर तवासुबिल हक व तवासुबिस सब्र। लोग अक्सर कहते हैं आपका घर किधर है, तो मैं कहती हूँ मेरा घर हर शहर में है। वो कैसे होता है, कितने घर हैं, कहाँ हैं, किधर हैं आपके बच्चे, किधर हैं आपके मियाँ, क्या कहते हैं, सब कुछ अल्लाह की रहमत है। फर्क क्या है, आयत का अगला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। सूरह नहल को हमेशा ही मैं कहती हूँ कि ये कायनात की एक सैर है, जैसे एक ट्रेन में बैठकर आप बाहर से देखें थोड़ी थोड़ी देर बाद मंजर बदलते हैं ना, तो सूरह नहल, इसको सूरह अनुम भी कहते हैं, नेमतों वाली सूरत। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु जाल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, चले इसको छोड़ के आगे थे, वजाल लकुम मिन जुलूद लनामी बुयूतन, इसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए تستخفونها. ہلکا پھلکا جانتے ہو تم ان کو. کب؟ یوم ذعنکم، اس دن جس دن تم سفر میں ہوتے ہو. و یوم اقامتکم، اور جس دن تم قیام میں ہوتے ہو. یعنی ایک وہ ہے ان ٹریول، ڈیورنگ ٹریولنگ بھی وہ گھر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب تم رہتے ہو یعنی کسی جگہ پہ مقیم ہوتے ہو وہ پھر بھی ہلکے ہوتے ہیں. ومن اسوافھا واوبارھا وشعارھا، اس نے جانوروں کے سوف، وول ہوتی ہے نا سوف، اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی. اساسم و متان الہین، جو زندگی کی مقرر مدت تک تمہارے کام آتی ہیں. اس آیت کو غور سے دیکھیے ذرا، اللہ نے گھر کے سکون کے بعد گھر کے ہلکے پھلکے ہونے کی بات کی. عرب چونکہ خانہ بدوش تھے، آپ نے بھی جاننا ہے سنا ہوگا، خانہ بدوش ٹینٹس جس کو خیمے کہتے ہیں لے کے چل پھرتے تھے. ناروے کا کلچر ہے ٹینٹنگ کا، گرمی آئیں گی تو وہ اپنے اپنے ٹینٹ اٹھا کر تو پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، جدھر رات بسر کی ادھر خیمہ لگایا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ گھر جو اتنے ہلکے پھلکے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس گھر کو انجوائے کرتے ہو. میں اس آیت کو سمجھ کے کہتی ہوں کہ بندے کا گھر ایسا ہو کہ جو اٹھا کے ساتھ بھی لے پڑے، لائٹ ہوم. آج ہم نے اپنے گھروں کو بہت بڑا کر لیا، بہت مشکل کر لیا. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر جو ہے نا، یہی اصل میں زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. اور اللہ نہ کرے آپ کو اگر کبھی گھر بدلنا پڑ جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جمع کیا کیا کیا. ویسے تو ہم اکثر گلہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور جس دن چینج کرنا پڑے کرائے پہ ہیں تو مالک مکان کہے گا چھوڑ دو، ایک سال کے بعد نکل جاؤ، نکلنا پڑتا. کبھی گھر کی شفٹنگ کی ہے آپ میں سے کسی نے؟ آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے مجھے. کتنے ٹرکوں کا سامان، کیا ہمارے گھر تستحفونہا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں کو ہلکا پاتے ہیں؟ ہم نے بوتلوں کو ڈھکن بھی سنبھال لیے ہوتے ہیں کدی کام آئے گا. ہم خالی بوتلیں نہیں پھینکتے، کہتے ہیں کبھی کام آئیں گی. مشین ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ہوتی ہے کچن میں استعمال میں، گرائنڈر بلینڈر جل گئی، ہم اس کو سنبھال کے اندر کاؤنٹر میں ڈال دیتے ہیں، بیٹھا دیکھنا یہ موجزانہ طور پہ اندر سے جب نکلے گی تو صحیح ہوگی، میں اس کا جگ بدلوا لوں. جگ ٹوٹ گیا، آپ نے بھیجنا ہے بندے کو، شاید 200 کے 1000 کا پٹرول لگ جائے گا، وہ ڈھونڈ ڈانڈ کے جا کر وہ اس کے اوپر پرانے پہ نیا لے آئے گا. میں بھی وہاں سے کوئی چیز خراب ہونا لے آتی ہوں، ادھر کوئی نہ کوئی حل ہے. باہر جو کچھ وہ پھینکتے دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، اللہ یہ پھینکنے لی چیز ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ میرا اپنا کوئی شپ ہونا تو میں سارا کچھ پاکستان دلوا دوں، کرسی سے عام فرنیچر، ایسا اتنا اچھا فرنیچر باہر رکھا ہوتا ہے، روڈ پہ جو مرضی لے جاؤ کیونکہ نیا لے لیا. بلکہ تو پیسے دیتے ہیں کہ پیسے بھی لے لو ہم سے اور جاؤ چیز لے جاؤ. تستحفونہا، اپنے لیے ایک عمل کی بات لیں، گھروں کو ہلکا رکھیے. جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آہستہ آہستہ، میرا ایک کرائٹیرین ہے، پچھلے سال میں شاید میں جس کو گھر کہتے ہیں 12 مہینوں میں سے 2.5 مہینے گن گنا کے سارے میں اپنے جس کو اپنا گھر لوگ کہتے ہیں اس میں رہی ہوں. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں یا باہر، تو میں کہتی ہوں جہاں جا کے برتن دھونے پڑتے ہیں وہ اپنا گھر ہوتا ہے، جہاں جا کر اپنی یعنی باتھ روم بھی دھونے پڑتے ہیں وہ اپنا گھر ہوتا ہے، تو اسی لیے شاید ہم اپنے گھر رہتے ہی نہیں. لیکن ہلکا پھلکا الماری میں مجھے ڈبلنگ یا ایسی چیز کے کوئی پیچھے چھپ گئی الماری کے اندر کوئی چیز مسالہ، آئی کینٹ، پیچھے دیوار سے لگانا شروع کرتی ہوں ایسے ایسے، اور بڑی بڑی لمبی کوششیاں. میری تو اتنی ہوتی بھی نہیں، اور میرا ڈرا ہے کچن میں، جہاں ناروے کی بات کریں نا الماری اوپر کی میں نہیں ڈرا ہے، تو میں لٹا دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی ڈبیوں میں مرچیں نمک اور جو کچھ بھی چھوٹی میں تھوڑی سی ہوتی ہے، اور ایسے رکھتی ہوں کہ میں کھولوں نا تو مجھے دیکھنا نہ پڑے کس میں کیا، مجھے اوپر سے دکھے تو میں بہت ایزیلی بنا لوں گی، ادر وائز مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا گھر میں کیا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیے آپ کا کچن تستحفونہا کی فیلنگ دیتا ہے؟ دالیں کتنی ہیں آپ کے گھر میں، مرچ مسالے کتنے ہیں، اور پھر پیچھے اسٹاک کتنا ہے؟ اور اگلا سوال آنکھیں بند کر کے سنیں، آپ کے فریزر کے کیا حالات ہیں؟ ہلکا پھلکا ہے، ملتا ہی نہیں، بعد میں یاد آتا ہے تھی مرغی وہ بیچاری فوت ہوئی ہوئی اندر، بیچارہ مہمان آ گیا رکھی ادھر ہی تھی گئی کدھر. آنکھیں بند کر کے فریج میں سے بندہ چیز نکال لے. میرا معیار یہ ہے اپنے لیے، ہمیشہ قائم نہیں رہتا ایسا، لیکن کہ میں آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں فریزر کھول لوں اور کس کونے میں کیا پڑی ہے میں لے کے آؤں. ہلکا رکھیے، ہوکا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے ہمارا زیادہ وقت جھاڑنے پونچھنے اٹھانے رکھنے میں لگتا ہے. آپ تو بادشاہ کیا کوئین ہے، کوئین الزبتھ چلی گئی اللہ اس کو لے گیا، آپ اس سے بھی زیادہ خود کفیل ہیں، آپ کے اچھے اچھے اتنے ملازم ہیں ماسیاں ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا. पहले लोग कहते थे काम का वक्त है सुबह, ये जो वक्त होते हैं सुबह का, इस पे ज़्यादा लोग कंफर्टेबली नहीं निकलते घरों से। आज भी बहुत सारे लोग पता क्यों नहीं आए, ये टाइम उनको सूट नहीं करता। क्यों नहीं भाई, क्या मसला नहीं है? मासियों से भी तो काम कराना है, फिर मासियों की राखी भी करनी है, कोई चोरी ना करते, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना आ जाए। सब दुनिया की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इस आयत से अपने लिए अमल की बात लीजिए कि हमने अपने घरों को हल्का रखना है। कपड़े पहनने के अलमारी हल्की सी, आपके वो कपड़े जो आप पहनते हैं बाकी तो बस दिखावे के हैं या देने के हैं। जूते पता ही नहीं, बाद में याद आता है वो रंग का भी जूता रखा था जो एंड टाइम पे रेस्क्यू कमेटी ने ढूंढ नहीं सकी, अब बाद में पकड़ लो। हमारे वालिद कहा करते थे कि जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद है उसको अपने मुंह पे मार लो। और हमारे साथ अक्सर चीज़ों के मामले में ये होता है, ये भी थी वो भी थी ये भी, एक्सेसिवनेस, अलहाकुमत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तो इतनी बात के बाद तकाबुल करते हैं, मकान क्या होता है और घर क्या होता है। मकान वो जगह होती है जिसके साथ इंसान का कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं होता, अभी मिसाल दूंगी। और घर कहते हैं, घर से मुराद वो इमारत होती है जिसमें कोई रहता है। देखिए आप और मैं दिन रात मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हैं, जैसे आज इस शादी हॉल में बैठे हैं ना। हाँ, अगर आज यहाँ आप में से किसी का हिदायत के साथ रिश्ता जुड़ गया, आपने यहाँ बैठकर नियत कर ली कि अच्छा मैंने भी अब कुरान सुनना है, अच्छा मैंने भी अगला सवीलुल जन्ना ज्वाइन करना है, अच्छा मैंने भी अगर कुरान पहले पढ़ी है तो नूरुल्ला नूर ज्वाइन करना है, अच्छा मैंने भी पहले इस दफ़ा दौरे कुरान सुनना है, कुछ भी, तो ये मकान नहीं रहना, ये आपका घर है। जिधर से हिदायत की तलब जागती है, जिस जगह पे आप कह लेना, जिधर आपको पता लग जाता है कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया। वो इमाम शाफी की बात के दो दिन इंसान की जिंदगी के बड़े अहम है, एक वो जिस दिन वो पैदा होता है, DOB डेट ऑफ बर्थ हर जगह चलती है बाहर की दुनिया में, खास तौर पे वो दिन बड़ा अहम होता है क्योंकि उस दिन आप पैदा हो गए हैं खैर से माशाल्लाह। लेकिन दूसरा वो दिन जिस दिन उसको ये पता चल जाता है कि क्यों पैदा हुआ। अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा वन्नकुम इलैना ला तुरजौन, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम बेकार पैदा किए गए हो और तुम वापस नहीं लौटोगे। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। हम में से हर एक अपने ऊपर लेकर सोचे तो लिखिए कि नबी सल्लम पर गारे हिरा में कुरान नाजिल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने दो तीन चीजों को इकट्ठा करके उधर रखा, आपकी हिरा या आपका तूर, वो मुकाम, वो जगह, वो मदरसा, वो सोर्स है जिधर से आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। आपका भी है, मेरा भी है। ये हॉल अगर अल्लाह ने अपने काम के लिए चुन लिया तो आपके लिए ये जगह गारे हिरा से कम नहीं होगी, क्योंकि रब के साथ तारुफ बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात लीजिए कि घर वो मकान है जहाँ के मकीनों को इंसान अपने आप से मुंसलिक महसूस करता है और जहाँ अपने प्यारे होते हैं। ऐसी है ना, आजकल के होम्स भी बाज़ औक़ात हाउसेस की फीलिंग देते हैं। घर बड़े, बच्चे थोड़े, बच्चे दो खुशहाल घराना, दो बच्चे खुशहाल घराना, तो घर कम से कम 6 बेडरूम तो होना। अच्छा हुआ क्या पता ही नहीं है, कोई घर बनी नहीं है, बच्चे किराएदार, टेनेंट्स, माँ बाप की अपनी रूटीन। और जरा ज्यादा ही जब आप मॉडर्न हो जाएंगे ना, तो माजरत के साथ बता दूं, मियाँ की भी और रूटीन, आपकी भी और रूटीन। आजकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब पता क्या है, हर बच्चे की अपनी गाड़ी, नई गाड़ी तो ड्राइवर गाड़ी दी हुई है उसके लिए, अपना रूम, अपनी LCD, अपना बाथरूम, अपना खाना। घर में बैठे हुए बच्चे फोन पे ऑर्डर कर करके खाने मंगाते हैं और सारा दिन माँ बाप से हो सकता है मुलाकात हो ना हो, तो घर नहीं है, माजरत, वो मकान है। जिस घर में आप में हार्मनी हो, बाप खांसे तो बच्चे फौरन पहुंच जाए, अबू ठीक है पानी चाहिए, माँ की मुंह से हाय निकल जाए तो बच्चे बच्चियां बेचैन हो जाएं, वो होम होता है। आज बहुत मुश्किल है, एक बाप जो अपने बच्चों को फजर के लिए उठाते थे तो बच्चे नहीं उठते थे, हर बच्चे नहीं उठते, हम भी नहीं उठते थे, सच्ची बात है, बाद में अल्लाह ने फिर आसानियां कर दी ना। तो एक दिन अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहते हैं कि मुझे अक्सर एक ख्याल आता है, अगर रात की तन्हाई में सहरी का वक्त, जो फजर का आलमोस्ट वक्त कह लें कोई भी, अगर मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए मुझे, तो तुम तो नहीं उठोगे, क्योंकि तुम फजर के लिए नहीं उठते, मैं तुम्हें उठाता हूँ तुम नहीं उठते, तो अगर मैं आवाज दूं बेटा इधर आओ मुझे दर्द हो रहा है, तो उठोगे? आज बताइए, क्या आज फजर के वक्त हमारे घर घर होते हैं कि मकान? घर के मकीन आपस में उनसर मोहब्बत महसूस करते हैं या कहते हैं खबरदार मुझे नहीं उठाना, हम डरते बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते, वजह क्या, माइंड कर देंगे, नहीं इनका दिन बड़ा लंबा है, नहीं ये कमाएंगे, इधर स्कूलों में जाना है, इन्हें यूनि में जाना है, कट्टा सुहा जाना है, क्या करने वहां जाके। आपने दिन के आगाज में ही शैतान को खुश कर दिया। फजर वक्त पे पढ़िए, क्योंकि फजर आपकी शैतान के खिलाफ पहली जीत है। आप इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ते हैं। तो एक जुमला लिखिएगा कि आप मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं। अक्सर लिखा था घर बराए फरोख्त, हाउस फॉर सेल हो सकता है, होम फॉर सेल नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि मैं मकान खरीद रहा हूं, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर खरीद रहा हूं। अल्लाह सुभान व तआला ने इस तरीके से इंसानों को इंसानों के साथ जोड़ा है। और आज आप देखेंगे कि घर, जिसको आप घर कहते हैं ना, ये घर बनाना आसान नहीं, मगर बनाना तो है। आज जो हमारा माशरा जिस भेड़ चाल पे चल गया है ना, उधर क्या है जिस समंदर का किनारा हो, सरसब्ज दरख्तों की कतार हो, और हर जदीद सहूलत घर में हो, और इसी तरह से टाइलें हों, सफ़ेद चमकता हुआ फर्श हो, लकड़ी का भारी फर्नीचर हो, जदीद तर्ज के नरम नाजुक सोफे हों, शीशों की अलमारियाँ, फिर उन्हें रखे हुए कीमती बर्तन, हर चीज़ घर के जो मकीन है ना, उनके आला ज़ौक की आयनादार होती है, लेकिन फिर भी कभी आप करीब से जाकर देखें तो उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है। और वो क्या है, किसी के शानदार कह कहे की, कोई शर्मीली मुस्कुराहट, कोई छेड़खानी, कोई बहन भाइयों का प्यार। वहाँ लोग होटल की तरह रहते हैं और वो हर चीज़ पा रहे होते हैं। यानी आज आप कह लीजिए, उर्दू में अगर जुमला बोलूँ तो ज़्यादा आसान है, एक होता है खुशहाल, यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा इंग्लिश में। आज हमारे पास सामान ताइश आराइश है, लेकिन पीस नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि चीज़ें सजी हुई हैं, उनको एंजॉय करने वाला कोई नहीं। मैं आपको सिर्फ लाहौर शहर की बात नहीं कर रही, मैंने छोटे छोटे गांव में देखा है, जोहराबाद से हमारा अल्लाह ने रिश्ता जोड़ दिया कुछ साल पहले, बड़े बड़े घर हैं, हवेलियाँ हैं, खाली पड़ी हैं। बच्चे लाहौर आए पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद गए, वहीं जॉब्स मिल गई, अब नौकर हैं, घर के कोई बुजुर्ग हैं, कभी इधर कभी उधर। तो दीवारें जो है ना, वो बोल बोल के बताती हैं कि ये अपने वक्त की पुरशिकोह किस्म की इमारत थी, लेकिन अब वहाँ बच्चे नहीं हैं। ये फितरत का असूल भी है, मैं नहीं कहती कि सब अपने आबाई घरों में रहेंगे, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं, ज़रा सा उसका अपने बचपन वाले घर से तकाबुल कीजिए। यानी आपके बच्चों को आज घर का क्या इमेज मिल रहा है, या आज का एक आपकी एक्टिविटी है जो बाद में करेंगे आप, जो आपके बचपन के हाल हालात थे वो, और आज आपके बच्चों के हालात में क्या फ़र्क है। और इसी का अपोजिट भी कीजिए, आपके बच्चों के भी बच्चे, जब आपके बच्चे थे तो घर का माहौल कैसा होता था, और आप बच्चों के बच्चों के साथ माहौल क्या है, तो फिर इसी से सोच लीजिए कि इन बच्चों के साथ अगले 10, 15, 20 साल में क्या होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम होम्स को हाउसेस बनाते जा रहे हैं, म्यूजियम्स। हमारे घर को देखकर ऐसे लगता है किसी बहुत बड़े मॉल में क्रिस्टल की सेलिंग एंड बाइंग की कोई दुकान है, बड़े बड़े फर्नीचर। और एक सिस्टर है, उनके घर में आप जाकर देखें तो दीवार वो वहाँ तक भरी पड़ी, जैसे ये खूबसूरत दीवारें हैं ना इधर, चले ये तो शादी वाले, इन्होंने तो ये सजाना ही सजाना है, इसी के तो पैसे हैं, लेकिन वो क्रिस्टल के छोटे छोटे खिलौने और उसमें कई बुत, और ये मैं दुबई से लाई थी, ये मैं श्रीलंका से लाई थी, ये वर्ल्ड टूर में फैलाए, और कहती मैं हर चीज़ को खुद साफ करती हूँ, रोज़ नौकर को नहीं हाथ लगाने देती कि तोड़ ना दे। तो क्या अंतुम लहा आकिफून, क्योंकि वह श्रीबूफी कुलू बिहिमुल इजल, जिनको समझ आ गया उनको आ गया, बछड़े हैं ये हमारे, ये हमारे वो बुत हैं जिनको पूछते रहते हैं, ये हमारी खिदमत के लिए थे, कपड़े जूते खाना पानी, हम इनकी खिदमत में जुट गए, और नुकसान क्या हुआ, हम मटीरियलिस्टिक हो गए, फिर हमें अपने गरीब रिश्तेदार याद नहीं आते, फिर हमारा उधर जाते हुए दम घुटता है, हाय उनके घर ठंड होगी, हाय उनका पानी पता नहीं साफ, हाय गलियाँ गंदी होंगी, हाय वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा, ये होगा। आप देखिए कि ऐसे घरों में मैंने अक्सर बुजुर्ग देखे हैं कि खाने की टेबल पे खाना रखकर बैठे हैं और बार बार उनकी नजरें दरवाजे पे जाती हैं, हर घंटी पे उनको ऐसे लगता है कि अभी दरवाजा खुलेगा और बच्चे आएंगे। एक हजूम होता था घरों में, एक हजूम होता था, बच्चों की कलकारियां, बहुओं का शाम को बैठना इकट्ठे, चाय पीना, शादी चाय और बड़ी बात है नमक पारे और जलेबियां, कोई बड़ा ही वी आई आई पीस रोना आ जाता था ना, तो फिर समोसा, सिर्फ हमें किसी के घर जाकर उम्मीद होती थी कि चाय के साथ जलेबी या नमक पारे या शक्कर पारे मिलते थे, तो हम उसी खाने के शौक में चलते थे कि चले नानीमा उधर चलते हैं, ऐसे ही था ना। और अगर एक समोसा शरीफ आ गया तो और किसी की जरूरत नहीं, कि समोसे के साथ और क्या होगा। आज आपको कोई कहे कि मैं शाम 5 बजे आपके घर आऊंगी, एक तो आप चाय पे कह के बुलाएं, वो तो हाई टी पता नहीं क्या उसका नाम रखा हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, औखी चीज़। लेकिन कोई आ जाए, क्या आप में से कितने लोग हैं वो सिर्फ नमक पारे और शक्कर पारे और चाय का कप पिलाएं और बड़े सेटिस्फाइड हों कि हमने खातिर कर दी। आप कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतनी दूर से आए, इतनी पहली दफा। एक हरकत शुरू हो जाती है, फ्रिज खोलो। अच्छा, एक और बड़ी यूनिवर्सल डिश होती थी हमारे कल्चर में, आज है लेकिन उसकी जगह थोड़ी लोगों ने ले ली, वो थे शामी कबाब। शामी कबाब बना के रखो, ये हर चीज में घुस जाते हैं। खाने के वक्त में शामी कबाब फ्राई कर लेंगे, चाय बनाई तो चाय के साथ कर लेंगे, नाश्ते में बर्गर बना देंगे इसके। वो हमारी एक साथी है ना, तो वो कहती है कि आलू बड़ा मुनाफिक होता है। मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये क्या बात है। कहती हर चीज के साथ लगाओ उसके साथ मिल जाता है, यानी घर में सिर्फ आपके आलू हो ना, अच्छी खासी दावत बन जाती। अच्छी बात थी, मेहमान पास तो बैठता है, मेहमान के पास आप बैठते तो थे। और सच बताएं, 10-10 5-5 मासियां लड़कियां हेल्पर होती थी आपके घरों में। पैसा तो तब भी बड़ा था, और अब करोड़पति उस वक्त भी थे हमारे बड़े, माशाल्लाह। आज ये हो गए, और कोई आपके घर आए और आप सिर्फ शक्कर पारे और उसको चाय नमक पारे खिला दें, ना आपने खुश होना है ना उसने होना। उसने कहना ये मेरी खातिर की। और जाते हुए कोई 500 12 8 7 800 का कोई मोटी लॉन बॉयल का जोड़ा दे दे गिफ्ट में, फुफ्फो की बेटी ये आपके लिए जोड़ा मैंने बनाया। उधर ही कहेंगे ये दे दें किसी को, मैंने नहीं पहनना।